Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Alag usme guna aa jata hai, alag dharma aa jate hain, to isiliye kaha. घृतात्परम मंडम हिवाति सूक्ष्मम ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म वह शिव। हालांकि ये सारा का सारा जगत उसी एक परमात्मा से प्रकट हुआ है और वेदांत में बार बार कहा है कि उस परमात्मा से प्रकट हुआ होने के कारण ये जगत परमात्मा रूप ही है, ये भी कहा गया है। लेकिन यहां श्रुति इससे भी और आगे बढ़ के कहती है कि यह जगत में उस घी के ऊपर जैसे सूक्ष्म मंड रहता है, उसी तरह परमात्मा इस जगत के सार के रूप में परमात्मा से माने जगत से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घी का मंड घी से भिन्न प्रतीत होता है, इसी तरह जगत का सार शिव जगत से भिन्न प्रतीत होता है। हालांकि जगत में भी शिव तत्व विद्यमान है, लेकिन जगत के सहित शिव को स्वीकार करना और जगत से पृथक करके शिव तत्व को स्वीकार करने में बड़ा अंतर है। जैसे दूध में घी पना है, लेकिन दूध के सहित घी को लेना और दूध से अलग किए हुए घी का अलग अलग महत्व है। दूध में रहे हुए घी के जो है वो घी के द्वारा आप न तो रोटी चुपड़ सकते हैं न दाल बघार सकते हैं, है ना? दूध में घी है करके उस दूध के द्वारा न तो दाल सब्जी बघार सकते हैं, दाल बघार सकते हैं, न रोटी चुपड़ सकते हैं। लेकिन उससे अलग कर लोगे दूध से तो वह जो घी होगा उससे दाल भी बघारा जाएगा और रोटी भी चुपड़ा जाएगा, उसका स्वाद अलग होगा उस दाल का। और क्योंकि श्रुति में वेद में घी को आयु कहा है, घृतम वही आयु आयुर्वही घृतम ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है। ये जो घी है ना घी, ये केवल गाय के दूध से बना हुआ घृत ये भौतिक पदार्थ नहीं है, ये तो अध्यात्म है, यही जीवन का आयु है। और वास्तव में कोई व्यक्ति बचपन से ही नियमित रूप में शुद्ध घी का सेवन करता रहे और उस सेवित घी को शरीर में पचाता रहे तो दुनिया में उसको कोई औषधि की आवश्यकता नहीं, और वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा उम्र जीने वाला होगा परिवार में समाज में। लेकिन होता क्या है, आजकल डॉक्टर कहते हैं कि घी मत खाओ, घी का तो नाम ही नहीं लेना। जरा सा ब्लड प्रेशर हो गया तो डॉक्टर कहते हैं घी को तो सूंघना भी नहीं, बोल देते हैं खाने की तो बात छोड़ दो सूंघना भी नहीं। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ गया तो कहते हैं घी को तो सूंघना भी नहीं, खाने की तो बात ही छोड़ दो। अब प्राचीन समय में यह कहा जाता था कि घी के बिना भोजन ही नहीं होता था, इसलिए हम लोग कौमुदी पढ़ते थे तो वहां प्रयोग ही आया था सर्पिशोपी स्यात। किसी के घर गए भात खाने के लिए बैठे, सब कुछ तो देखा उस, लेकिन कहीं घी का नाम नहीं देखा। तो उसने उस घर वाले से कहा कि अरे भाई तुम्हारे घर में घी भी है क्या, तो है तो फिर क्यों नहीं देते हो? तो घी का बड़ा महत्व था मानव जीवन में। अब आज वह घी ही जहर का काम कर रहा है, इसका कारण क्या है? प्राचीन लोग गलत थे कि सही थे, कि आजकल के हम लोग गलत हैं कि सही हैं? ये घी के साथ जीवन का जो संबंध प्राचीन काल से जो चला आया है उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी जो बर्ताव है उसमें गलत आ जाने के कारण घी हमारे लिए गलत हो गया। घी उसी के लिए आयु है, घी उसी के लिए अमृत है जो घी खाकर घी को पचाता है। और घी को पचाने का कोई हाजमोला की गोली से घी पचने वाला नहीं है। जैसे डाबर का जो हाजमोला खा लो तो जो कुछ भी खाओ सब पच जाता है, लेकिन इसका मतलब घी पचने वाला नहीं है उससे। घी पचने का मतलब होता है, घी एक ही उपाय से पचता है, वह है कि शरीर से खूब परिश्रम करो। घी खाने के बाद यदि शरीर से खूब परिश्रम करते हो तो वह घी आपके जीवन के लिए अमृत का काम करेगा, वही आपके लिए आयु का काम करेगा। और वह घी पचता नहीं है इसलिए वही विकार हो जाता है, क्योंकि घी पचेगा तो क्या होगा मालूम है? घी पचेगा तो वह घी ऊर्जा के रूप में परिणत होगा, जैसे अग्नि के संयोग से वह घी ज्योति के रूप में परिणत होता है। यूं तो खाली उस घी को कहीं कमरे में रख दो तो उस कमरे के अंधकार को वह हटा नहीं पाएगा, लेकिन उसी घी का ज्योति और अग्नि के साथ संयोग हो जाता है तो वह अंधकार को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है घी। इसी तरह वह खाया हुआ घी यदि शरीर में पच जाता है तो शरीर की ऊर्जा के रूप में परिणत होता है, और जो ऊर्जा के रूप में परिणत होता है उसी को आपके भाषा में एनर्जी कहते हो आप, अंग्रेजी में एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। वो कौन सी है? घी में, घी पचेगा तो एनर्जी होगा और घी नहीं पचेगा तो वह एनर्जी नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी। जब पचा हुआ घी ही जीवन के लिए आयु है, जीवन का सार है, जीवन का अभिन्न अंग है। क्योंकि पहले के जमाना शारीरिक परिश्रम करने का जमाना था, व्यक्ति गांव में रहते थे, प्रातः काल उठकर सबसे पहले कमंडोल लेकर 1 किलोमीटर जाते थे, तब तो घी पचता था। 1 किलोमीटर जाते थे, जाना 1 किलोमीटर, फिर उधर घूमते गए, दातुन करते हुए घूमते हुए आए, 2 किलोमीटर घूम गए, वैसे ही पच जाएगा घी। फिर नहाने के लिए दूसरे तरफ बावड़ी में चले गए, और नहाने के लिए गए तो एक घड़ा भी लेके चले गए और खुद नहा भी लिया, नहाने के बाद एक घड़े भर के पानी कंधे में लेकर घर में आ गए, देख लो, तब जाकर घी पचता था, तब जाकर घी को आयु कहा गया था। और आज तो घर में अपने को प्यास लगी तो औषधि दवाई खाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ी तो 1 गिलास पानी अपने ही किचन में जाकर अपने नहलाते, अरे कल्लू 1 गिलास पानी ला, मुझे दवाई खानी है, तो तुम्हारी दवाई ही नहीं पचेगी तो घी क्या पचेगा भाई। इस ढंग से घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मम ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म। ये सर्वभूत जितने भी प्राणी हैं, जड़ और चेतन स्थावर जंगम, जितने भी पदार्थ आप देखते हो जगत में, ये सब का सार क्या है? तो जैसे घी का सार घी का मंड है, उसी तरह संसार का जो सार है, जगत का जो सार है, वो क्या है? तो बोले शिव है, परमात्मा है बस। अब रही बात घी का, जो मंड है वो तो घी के ऊपर ऊपर रहता है, घी के नीचे गहराई में जाओगे तो वह डरा हुआ जला हुआ वो छाछ मिलेगा, है ना? वो जो छाछ का अंश है वो डरकर जो जलकर नीचे बचा है, और वह बहुत ही अच्छा नहीं होता है, खाते समय भी उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो वो सब होता था बिल्ली के लिए, हमारे घर में बचपन में सब होता था, गाय थे तो गाय का दूध होता था, दूध को तपाया जाए खूब अच्छी तरह, और उसके बाद उस कढ़ाई में उस बर्तन में जो नीचे जमा हुआ होता है वो सब दूध का विकार ही है, तो उसको खुर्च के फिर उसको बिल्ली को दिया जाता था। इसी तरह मक्खन बना ली, मक्खन के बाद उसको मक्खन को तपाया, तपाने के बाद घी को अलग किया, उसमें रहे हुआ जो छाछ जो जला हुआ था उसको भी फिर बिल्ली को दे दो, बिल्ली खाती थी। घृतात् परम, इसी तरह सारे जगत का सार रूप जो है मक्खन, उसके मंड के तरह शिव तत्व है। अब ये देखो, ये शिव तत्व जैसे घी का मंड घी के ऊपर रहता है, ऐसे शिव तत्व ये संसार से ऊपर रहता है क्या? कह तो दिया गीता में, तो ये तो कहा है गीता में, तो यही कहा है शिव संसार के अंदर न होकर संसार से ऊपर है। गीता में कहां कहा है ये बात? ऊर्ध मूल मदसार का, मूल माने सार, जगत का जो सार है वह ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का अर्थ शंकराचार्य जी ने देशगत ऊपर नहीं कहा, ऊर्ध्व शब्द का अर्थ होता है उत्तमत्वात् ऊर्ध्व, परमात्मा को ऊर्ध्व मूल वाला, जगत को ऊर्ध्व मूल ये कहा। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ क्या किया? मूल, जगत का कारण, जगत का सार क्या है? तो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व ये रूढ़ी अर्थ है ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि शिव ये जगत के ऊपर ऊपर रहता है, नहीं, जगत का उत्कृष्ट रूप है, जैसे घी का उत्कृष्ट रूप है, उत्तम रूप है घी का मंड, उसी तरह जगत का सार उत्तम रूप है शिव परमात्मा। शिव माने कल्याण। या कौन सा शिव की बात कर रहे हो भाई? तो प्रमहसि पदे निस्त्रेर गुन्नी शिवाय नमो नमः। शिव के चार रूप बताए गए हैं ना, एक भव रूप है, बहुल रजस्य विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः, तो भव रूप है, उस भव रूप को नमस्कार करने के लिए क्या कहते हैं? भवाय नमः, हम प्रार्थना कराते हैं पहले। इसी तरह इस जगत का जो परमात्मा शिव है उसका दूसरा स्वरूप है मृड रूप, सत्वोद्रिक्त मृडाय नमो नमः, सत्वगुण के माध्यम से वही परमात्मा शिव जगत का रक्षक और प्राणियों का हितकारक होने के कारण जन सुख कृते सत्वोद्रिक्त मृडाय नमो नमः, वो मृड हो जाता है। बहुल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जब तमगुण की अधिकता से इस सब जगत का संहार करता होता है तो उस समय उसको हरह कहते हैं, उस हरह को नमस्कार, तो हराय नमः चतुर्थ्यंत हराय नमः। और अंत में पुष्पदंताचार्य जी ने कहा प्रमासी पदे निस्त्रेर गुन्नी शिवाय नमो नमः, जब वही शिव वही परमात्मा तीनों गुणों को सर्वथा परित्याग करके असंग हो जाता है तो उस समय उसका नाम होता है शिव। रजोगुण से संबंधित होता है तो हरा, सत्वगुण से संबंधित होता है तो मृड, तमोगुण से संबंधित होता है तो हरा, और गुणातीत होता है तो उसको शिव कहते हैं। अब देख लो, जब दही को मथ लिया तो मथ दही से अलग हो गया मक्खन, उस मक्खन को गर्म कर दिया है तो फिर उससे अलग हो गया घी, और उस घी को भी थोड़ा सा ठंडा हो गया तो उससे अलग हो गया मंड, घी का सार मंड पापड़ी। ये तीनों से अलग होने पर मंड होगा, दही के अंदर मंड नहीं होगा, घी के अंदर मंड नहीं होगा, होगा तो सही कारण रूप में लेकिन दिखेगा नहीं, दूध के अंदर मंड नहीं दिखेगा। जब दूध के अंदर मक्खन ही नहीं दिख रहा है तो मंड कहां से दिखेगा? दही के अंदर मंड नहीं दिखेगा, दही के अंदर जब मक्खन ही नहीं दिख रहा है तो मंड कहां से दिखेगा? तब घी के अंदर मंड नहीं दिखेगा, मक्खन के अंदर मंड नहीं दिखेगा, मक्खन में जब घी नहीं दिख रहा है तो मंड कहां से दिखेगा? तो दूध में से दही अलग, दही से फिर मक्खन अलग, मक्खन से घी अलग, तब जाकर घी से अलग मंड दिखेगा। इसी तरह अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से आरोपित पदार्थों का जब आप बात करने लगते हो तो सब पदार्थों का बात करते करते अर्थात वो आदेश नेति नेति करते हुए जब सबका बात कर देते हैं तो उस बाधाधिष्ठान के रूप में जो बाद का पद अधिष्ठान प्रतीत होगा, जो अधिष्ठान होगा वही इस जगत का मंड होगा, उसी को इस संसार का मंड कहा जाएगा। सब नाम रूप का बात कर देने के बाद उस बात का जो अधिष्ठान रहेगा वो अधिष्ठान को ही यहां मंड कहा, उसी को यहां शिव कहा, वो जगत का मंड। इसीलिए पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिम्न स्तोत्र में कहा अतद व्यावृत्यायाम जगिदम अभिधत्ते श्रुतिरपि। संसार में दो ही पदार्थ है, एक तत् और दूसरा अतत्। तत् माने परमात्मा, तत्पद का लक्ष्यार्थ। अतत् माने संसार जगत, इदम पद का वाच्यार्थ। इदम पद का वाच्यार्थ जो है वह अतत है, तम पद का तत्पद का वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ वह तत् है। तत् और इदम ये दोनों एक परस्पर में मिले हुए हैं। जब ये अध्यास के माध्यम से अन्योन्य अध्यास, धर्माध्यास, धर्मी अध्यास, संसर्ग अध्यास आदि अध्यासों के माध्यम से जब तत् और इदम दोनों परस्पर मिले हुए रहते हैं तब फिर वो मंड नहीं दिखता है, तब फिर वो शिव तत्व दिखता नहीं है। या तो फिर इदंतेन जगत प्रतीत होगा, या तो फिर अहमतेन जीव प्रतीत होगा, फिर तत्त्वेन शिव प्रतीत नहीं होगा। जब ये जगत रूपी उसको दही को जब मथ देते हैं तब फिर इसमें से जो भौतिक वस्तु है वो अलग हो जाएगा, फिर उसमें से आध्यात्मिक वस्तु है वो पृथक हो जाएगा। उसको भी जब आप मथते हो तब जाकर परमात्मा तत्व अलग होगा। अब ये मतने की प्रक्रिया तो उपनिषदों में कई बार बता दिया है। आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवोचोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात्। आत्मानम शरीर को तुम नीचे की अरणी बनाओ, दही मतने का जो दही का पात्र है जिसमें दही रखकर मतते हो उसको गांव के भाषा में ठेकी बोलते हैं। वह शरीर ही वह चीज है और उसमें जो दही रखते हो यही सब उसके अंतकरण के शरीर ठेकी का है, तो उसके अंदर कर्ता भोक्ता ये पना है, यही दही की तरह है। और उसमें मदानी डाल लो तो वह प्रणव मदानी की तरह है। आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात्। नित्य निरंतर वेदांत विचार ही ये मंथन की प्रक्रिया है। प्रणव उत्तर की अरणि मधानी है और वेदांत विचार नहीं ध्यान ही निर्मथन है, वो प्रक्रिया है। इस तरह आप वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ को विचार करोगे तब जाकर वो मंथन के द्वारा दही के अंदर छुपा हुआ जैसे मक्खन प्रकट होता है उसी तरह भौतिक पदार्थ में छुपा हुआ वह परमात्मा शिव तत्व प्रकट होता है। ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म। सर्वभूतेषु गूढ़म शिवम ज्ञात्वा, हर पदार्थ में उसकी सत्ता बनकर छुपा हुआ उस परमात्मा शिव को जानकर, शिवम ज्ञात्वा। और को जानकर आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, लौकिक प्रयोजन भले ही सिद्ध हो जाए, जिस प्रयोजन आपको प्राप्त करना चाहते हैं वह प्रयोजन और को जानकर नहीं होगा, उसमें छुपा हुआ शिव को जानकर ही तुम्हारा प्रयोजन पूरा होगा। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्। क्यों सर्वभूतेषु गूढ़ः तस्मात् विश्वस्य एकम्। माया के द्वारा प्रतीयमान ये सारा का सारा नाम रूपात्मक भेद मूलक द्वैत मूलक विकल्प मूलक ये जो सारा विश्व है, उस विश्व में वही एक चीज एक तत्व छुपा हुआ है। आप परमात्मा को किसी के माध्यम से विचार कर सकते हो, क्योंकि सभी में छुपा हुआ है। इसलिए जिसको भी लेकर आप विचार करोगे तो विचार और अनुसंधान के क्रम में तुम वहीं पहुंचोगे जहां परमात्मा विद्यमान है, अधिष्ठान के रूप में, सत्ता के रूप में विद्यमान है। विश्वसैकम परिवेष्टितारम, जैसे कि आपका शरीर है, आप विचार करने लग जाओ इसी शरीर पर, ये शरीर में कितने तत्व विद्यमान हैं करके जब आप विचार करने लगते हो। दिखने में तो शरीर एक दिख रहा है, लेकिन इस शरीर में रहने वाले तत्व, शरीर का जो तत्व है, कारण है, उसके बारे में विचार करते हो तो कम से कम 5 तत्व इसके अंदर आपको मिलेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व आपको इसमें मिलेंगे। इन 5 तत्वों में से 50% तुम्हारे पृथ्वी तत्व मिलेगा इस शरीर के बारे में विचार करोगे, तो बाकी 50 तत्व जल, तेज, वायु और आकाश के रूप में प्रतीत होगा, क्योंकि पंचीकरण के प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ स्थूल प्रपंच और उस स्थूल महाभूतों के द्वारा बना हुआ ये शरीर में भी वह पंचीकरण पंचीकृत पदार्थ ही हैं। पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर में भी पंचीकृत पदार्थ हैं। तब आप जब शरीर के बारे में विचार करने लगते हो तो फिर 50% आपको पृथ्वी तत्व मिलेगा, बाकी 12.5% जल, 12.5% तेज, 12.5% वायु, 12.5% आकाश मिलेगा। तो ये सारा शरीर का जो तत्व है वो तो 5-5 तत्व सिद्ध हो गए। ये हो गया अन्नमय कोष के बारे में विचार करते समय में मिल गए ये। अब जब इसके अंदर तुम जाते हो, सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोष के बारे में तुम विचार करो, मंथन करो मनोमय कोष को, तो जब मनोमय कोष के बारे में विचार करते हो तो 10 अवयव मिलते हैं उसमें, या 10 अवयव मिलते हैं, नहीं, प्राणमय कोष में 10 अवयव मिलते हैं, अन्नमय कोष के अंदर प्राणमय कोष, प्राणमय कोष के बारे में जब विचार करते हैं तो वहां 10 अवयव मिल जाता है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण। 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण के बारे में विचार करते हो तो अपंचीकृत पंच महाभूत मिल जाते हैं। अपंचीकृत पंच महाभूत के बारे में विचार करते हो तो अपंचीकृत पंच महाभूत के साथ साथ ही उसमें विद्यमान रजोगुण और अरजोगुण मिल जाता है व्यष्टि और समष्टि के रूप में। ये हो गया अन्नमय माने प्राणमय कोष का मंथन। उसके और आगे जाते हो मनोमय कोष, मनोमय कोष को जब आप मंथन करते हो तो वहां 6 चीज मिल जाता है, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। मन सत्वगुण का समष्टि कार्य है तो 5 ज्ञानेन्द्रिय सत्वगुण के व्यष्टि कार्य हैं। और आगे जाते हो तो विज्ञानमय कोष, उसका भी मंथन करो। जब उसको मंथन करते हो तो बुद्धि और पंच ज्ञानेन्द्रिय वहां विद्यमान होते हैं, तो आपको अलग अलग पता चल जाएगा विज्ञानमय कोष इतने अवयवों से बना हुआ है। विज्ञानमय कोष में 6 वस्तुएं हैं, बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रियां। मनमय कोष में भी 6 वस्तुएं हैं, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां। प्राणमय कोष में 10 वस्तुएं हैं, पंच प्राण और पंच कर्मेन्द्रियां। अन्नमय कोष में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तुम जहां भी जिस कोष में भी जाओगे वहां 1 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं। और उससे और गहराई में जाओ तो आनंदमय कोष आता है, तो आनंदमय कोष को जब तुम मथते हो वहां भी 3 वृत्तियां आपको मिलती है, प्रिय, मोद और प्रमोद, 3 वृत्ति मिल जाते हैं आनंद के, 3 भेद मिल जाता है। ये जो आनंद के तीन वृत्तियां वहां भी एक से अधिक पदार्थ की उपलब्धि हुई, प्रिय मोद प्रमोद अलग अलग रूप में वहां रहता है तीन वृत्ति। लेकिन एक तत्व ऐसा है कि हर जगह वो अकेले मिलेगा। अन्नमय कोष में ये पांच महाभूत मिलने पर भी मैं एक हूं, प्राणमय कोष में ये प्राण और कर्म इंद्रियां दस मिलने पर भी मैं एक हूं, मनोमय कोष में मन और पांच ज्ञान इंद्रियां छह मिलने पर भी मैं एक हूं, विज्ञानमय कोष में विज्ञान बुद्धि और पांच ज्ञान इंद्रियां छह मिलने पर भी मैं एक हूं, आनंदमय कोष में प्रिय मोद और प्रमोद ये तीन वृत्तियों के मिलने पर भी उस वृत्ति के साक्षी के रूप में मैं एक हूं, मैं हमेशा एक हूं। जागृत में भी मैं एक हूं, स्वप्न में भी मैं एक हूं और सुषुप्ति में भी मैं एक हूं। अन्नमय कोष पांच भूतों का है, मैं एक हूं। इस तरह जब आप विचार करते हो, मंथन करते हो, ध्यानम निर्मथनाभ्यासात, ध्यान रूपी चिंतन रूपी मनन रूपी अभ्यास जब करते हो, तब तुम्हें क्या पता चलता है, वही एक शिव विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, सभी को वह घेर कर बैठा हुआ है, उसी ने घेरा हुआ है। यानी अपनी सत्ता से उसको पृथक अलग होने न देना, उसी को घेरना है। अब अपने घर बनाकर घर को कंपाउंड से घेरते हो, इस तरह वो नहीं घेर रहा है। उसका घेरने का मतलब क्या हुआ, वेष्टित करने का मतलब घेरना। वो किस तरह घेरता है पदार्थों को, अपनी सत्ता से उसको अलग होने नहीं देता है, यही घेरना है। यदि वह अपनी सत्ता से अलग हो गया तो अलग सत्ता वाला होगा या फिर अस्तित्वहीन हो जाएगा, और यह परमात्मा को मंजूर नहीं है। जगत के नाम रूपात्मक तमाम पदार्थ परमात्मा से अलग होगा तो अलग सत्ता वाला होना पड़ेगा, यह परमात्मा को मंजूर नहीं है। वो अकेले रहना चाहता है। अब पदार्थ अपनी सत्ता से अलग होंगे तो फिर अलग अस्तित्व हो जाएगा, और उसके अलग अस्तित्व नहीं मानते हो तो फिर वो बिल्कुल मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या हो जाएगा माने असत हो जाएगा, वो भी उसको मंजूर नहीं। पदार्थ भी रहें, नाम रूप सारा पदार्थ भी रहें, और संसारियों का व्यवहार भी चले, और अध्यात्मवादियों का श्रवण मन निधिध्यासन भी होता रहे, इसके बावजूद भी ये अपनी सत्ता से अलग न हो, इसको घेर कर बैठा हुआ है, उसी को कहते हैं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा। उसको जानकर किसको, देवं ज्ञात्वा, क्योंकि उसको जब जानोगे तो देवता के रूप में, देव शब्द यहां वाच्यार्थ नहीं लेना, जो स्वर्ग आदि का इंद्र आदि देवता को देवता कहते हो उस वाच्यार्थ को न लेकर यहां लक्ष्यार्थ लेना, लक्षणावृत्ति से योगार्थ लेना, देवतनात् देव, प्रकाश करने वाला होने के कारण प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप होने के कारण वही सब पदार्थों को, जैसे हर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, ज्ञान ही पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसी तरह वह ज्ञान रूप होने के कारण वह देव रूप है, देव रूप होने के कारण उस देव को ज्ञात्वा मुच्यते सर्वपाश ही, तुम जानने वाले व्यक्ति समग्र पाश से मुक्त हो जाता है। पाश क्या है, तो आपकी पंच पर्वात्मक पाश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेश, ये जो महर्षि पतंजलि ने अविद्या के पंच पर्व बताए हैं, ये पांच पर्व ही जीवात्मा के लिए पास हैं। पाशवद्दो ही पशवः पाश पंच विद स्मृतः, जो पाशों से बधा हुआ है वह पशु हैं। पाश पांच प्रकार के हैं, उन पांचों प्रकार के पाश से मुक्त जो होना है, तो वह मुक्त होने का उपाय यही है कि वह सर्वभूतेषु गूढ़ः, वह ज्ञान स्वरूप शिव को आत्मा के रूप में तुम जानोगे, तभी तुम पाश से मुक्त होगे, तब तुम पशुभाव से मुक्त होकर पशुपति भाव में स्थित हो जाओगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।